हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 5। नहि कश्चित् षडमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते हि वशः कर्म सर्वः सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान बहुत सुंदर बात यहाँ बोल रहे हैं जिससे हमारे डाउट क्लियर हो जाएगा कि कर्म श्रेष्ठ है, ये खाली बैठे रहना और कर्म को त्याग कर देना ये श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है देहधारी जीवात्मा के लिए। जीवात्मा क्योंकि हमेशा एक्टिव है, लिविंग फोर्स इसे कहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि कोई कार्य ना करे, अपितु रजगुण तमगुण और सतोगुण के प्रभाव में व्यक्ति कोई ना कोई कार्य अवश्य करेगा। तो अगर कार्य करेगा तो उसका कर्मफल बनेगा ही। अगर वो कर्म कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसका कर्म बनेगा ही। इस कारण से व्यक्ति सोचे कि मैं केवल कर्म त्याग करके मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, यह संभव है, क्योंकि कर्म करना हम बंद कर दे ऐसा संभव नहीं है। तात्पर्य यह देहधारी जीव का तो प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। केवल जब हम सो जाते हैं एक गहरी नींद में तब कॉन्शियस कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी कि सोच समझ के कार्य करना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी शरीर क्रियाएं हैं वो लगातार होती रहती जब तक आत्मा रहती है इसमें। केवल शरीर मृत होने के बाद, यानी आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, तब कोई कार्य नहीं होता। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील या सक्रिय रहता है, वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। तो ये बात तो बहुत क्लियर है, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आत्मा की वजह से शरीर गतिमान है और हमेशा सक्रिय रहता है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। बहुत सुंदर बात है कि अगर हम किसी भी क्षण, इस क्षण अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माया की सेवा कर रहे हैं। बीच में कोई ऑप्शन नहीं है, दिन है और रात है, शाम नहीं है कोई। तो हर क्षण हमारे पास एक स्वेच्छा है कि हम माया की सेवा करें कि कृष्ण की सेवा करें। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्र द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत में अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। बहुत सुंदर बात है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। माया के संसर्ग में होता क्या है, हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं और शरीर मानते के साथ साथ त्रिगुणात्मक रूप से प्रभावित होती है हमारी चेतना, रजगुण सतगुण तमगुण के अनुसार या इनके मिश्रण के अनुसार। तो इनके मिश्रणों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार की शास्त्रों में निर्दिष्ट विधान दिए गए हैं, गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, वानप्रस्थ के लिए, सन्यासी के लिए, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि के लिए। तो अब इसको कैसे समझा जाए इस प्रकार से कि नदी है, नदी को पार करना है, लेकिन नदी को पार करने के साथ साथ नदी में बहना भी पड़ता है। तो मानव जीवन का उद्देश्य तो यही है कि हम भगवान के धाम पहुँचें, भगवान की भक्ति करें, लेकिन सभी लोग केवल 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 भक्ति में नहीं लगते हैं। तो इसलिए साथ साथ जो हमारे क्रियाएं हैं, शरीर की क्रियाएं हैं, वो शास्त्र के द्वारा नियमित की जाएं। इससे हमारा मानव जीवन शुरू होता है और हमारी चेतना का धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंगली, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कर्मयोग के साथ साथ प्रभुपाद जी भक्ति योग पर बहुत बल देंगे कि अगर हम डायरेक्ट भक्ति करें और उसकी वजह से शास्त्रों में निर्दिष्ट कुछ कर्म हमारा छूट भी जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वो कार्य जो हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए किए हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लाभकारी होंगे, बल्कि शाश्वत रूप से लाभकारी हैं। श्रीमद् भागवत 1.5.17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन् अपक्वोऽथ पतेत तो यदि यत्र क्वावभद्रम अभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां सुधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें हानि या बुराई नहीं होगी। कितना सुंदर और अद्भुत श्लोक है। हम लोग मान लीजिए किसी भक्त का पतन हो जाता है तो सोचते हैं अरे भक्ति कर रहा है और उसका पतन हो गया, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो खराब भक्त है। और आप कह तो आप कह सकते हैं कि किसी किसी मात्रा में वो खराब है भी, लेकिन यहाँ शास्त्र कुछ और बोल रहा है। वो कह रहा है कि अगर वो ठीक से भक्ति नहीं भी कर पाया और उसका पतन भी हो गया तो भी क्या हानि है। देखिए जैसे बहुत बार हम किसी को भक्ति में लेके आते हैं तो हम सोचते हैं क्या ये जीवन भर भक्ति करेगा, और अगर जीवन भर नहीं करेगा तो उसको भक्ति में लाने का या उसको ट्रेनिंग देने का लाभ क्या है। लाभ ये है कि जो भी वो इस जीवन में भक्ति कर रहा है वो उसके लिए शाश्वत क्रेडिट में चला जाता और इस प्रकार से कई जन्मांतर तक जुड़ते जुड़ते श्रद्धा इतनी विकसित हो जाती है कि फिर अब उसका पतन नहीं होता है, उसको विश्वास हो जाता है कि मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हर भक्त एक न एक दिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं, भले ही हम तुरंत ये अनुभव ना कर पाए कि हम कृष्ण के दास हैं, लेकिन ये चीज हम अनुभव करते हैं कि कृष्ण की सेवा करने में जो सुख है वो माया की सेवा करने में नहीं है। जितना अनुभूति बढ़ती जाएगी उतना ही अपने आप माया के प्रलोभनों से हमको वैराग्य उत्पन्न होने लग जाएगा। अगर वैराग्य हृदय में नहीं है तो कारण यही है कि हम अभी ठीक से भक्ति किए नहीं। अगर भक्ति ठीक से करें तो तुरंत अनुभव कर सकते हैं कि भगवान की भक्ति करने में कितना सुख है और माया की सेवा करने में केवल एक निरक्षता है, बोरिंग है, बोरिंगपना है। तो खैर, किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के हैं। यत्र क्वाभद्र मुष्य किम कोवार्थ भजताम कोवार्थ आप तो भजताम सुधर्मतः। बहुत सुंदर श्लोक है कि बहुत अच्छे से शास्त्रों का नियम पालन किया, भक्ति का क्षमा कीजिएगा और नियम पालन किया लेकिन भक्ति नहीं करी तो कोई लाभ नहीं है। तो श्लोक समझिए, भक्ति किया और शास्त्रानुमोदित कार्य ना भी कर पाया तो बहुत अच्छा है, कोई हानि नहीं है, भले भक्ति से पतन हो जाए और भक्ति ठीक से ना कर पाए तो भी, लेकिन अगर बहुत अच्छे से अपने कार्यों को किया है लेकिन भक्ति नहीं कर पाया तो कोई लाभ नहीं है। क्यों कोई लाभ नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा का संबंध है भगवान से, जागृत होना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्मों में उसे प्रवृत्त होना चाहिए जिससे द्वारा भगवान से उसका संबंध जागृत हो, और अगर वो नहीं हो रहा है तो उन सभी नियमों का और शास्त्रों के उद्देश्यों का विफल हो गए, उसको पालन करने का कोई फायदा नहीं। इसी बात को श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया है। उसने बोले हैं कि विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम धर्म स्वनिष्ठतः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। वर्णाश्रम के अनुसार व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है लेकिन उसके द्वारा, उसके जो शुद्धिकरण होना चाहिए हृदय का, उसके द्वारा अगर उसकी भगवान विश्वक्सेन या भगवान विष्णु की कथा में रुचि नहीं है तो फिर केवल उसने श्रम किया है, मेहनत करी है। जैसे एक चावल है, चावल का छिलका होता है तो अगर छिलके को कूटते रहें तो चावल उत्पन्न नहीं होगा, धान को कूटेंगे तो चावल उसमें से निकलेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति छिलके कूट रहा है तो केवल श्रम उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, पसीना आ रहा है लेकिन कोई उसको लाभदायक फल प्राप्त नहीं हो रहा है। और एक और चीज बता रहे हैं, नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों को, कर्म इंद्रियों को संयमित किया हुआ है, यानी कि अपने हाथों को, अपनी आंखों को, क्षमा कीजिएगा हाथों को नहीं, अपनी जीभ को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, कि मैं बुरे कार्य नहीं करूंगा, गलत कार्य नहीं करूंगा, फिर भी एक दोष होगा उसमें, और दोष ये है कि वो भोग के विचारों से बचा नहीं रह सकता, वो कार्य करने की प्रवृत्ति है और भोग के विचार उसके मन में आते ही रहेंगे। तो जरा देखिए क्या बोल रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। बहुत ही सुंदर श्लोक है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यानी कि हमारा हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं है, हृदय तो भोग की वासनाओं से लिप्त है, कार्य करने की प्रवृत्ति है, कर्म करने की प्रवृत्ति है, और उस प्रवृत्ति को भगवान में ना लगा करके, भगवान की सेवा में ना लगा करके हम केवल ध्यान का नाटक करें तो ये मिथ्याचार है। ये भगवान बोल रहे हैं, भगवान सबके हृदय में है और जानते हैं कि कौन मिथ्याचारी है और कौन सदाचारी है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में कार्य क्या नहीं करते, मतलब जैसे मान लीजिए भक्त लोग पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, तो उसको वो बोलते हैं ये कर्म है, और खुद वो एक जगह बैठे रहेंगे बस ध्यान का नाटक करेंगे। तो इस प्रकार का कार्य करने से व्यक्ति केवल मिथ्याचार को ही बढ़ावा देगा। जो कार्य करने की प्रवृत्ति है कृपया उसको पहले भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करना सीखें, इसके द्वारा हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं रहता। बहुत ही कठोर श्लोक है। तो ये योगियों के ऊपर तो है ही, साथ साथ हम भक्तों के ऊपर भी है। हम लोगों को केवल नाटक नहीं करना चाहिए कि हम हरे कृष्ण मंत्र चुपचाप अकेले कहीं जाप करेंगे और हम इस प्रकार से दुनिया को दिखाएंगे कि कितने बड़े भक्त हम हैं। ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है, प्रायः हम सभी के लिए संभव नहीं है। हमारे लिए क्या संभव है, जो प्रभुपाद जी ने बताया है उसके अनुसार भक्ति के नियमों का पालन करें, सभी अंगों का पालन करें, और साथ साथ दिन में कम से कम दिन में अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें, प्रैक्टिकल सेवा के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति की डायरेक्ट क्रियाओं में हम ना लगें, जैसे कि जप करना या जप करते समय मान लीजिए भोग का विचार आने लग गया तो जप छोड़ देना, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि केवल दिन भर हम बैठ के जप करते रहें और भोगों के बारे में सोचते रहें तो ये अच्छी बात नहीं है। उससे अच्छा होगा कि सुबह के समय हम श्रवण कीर्तन में बिताएं, शाम के समय श्रवण कीर्तन के लिए बिताएं, और दिन का समय हम भगवान के लिए कुछ प्रैक्टिकल सेवा करें, जिसके द्वारा हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और एक दिन शुद्ध श्रवण कीर्तन के लिए योग्य हो जाएगा। शुद्ध श्रवण कीर्तन का अर्थ यह है कि श्रवण कीर्तन में इतनी रुचि मिलने लग जाएगी कि आपका मन भोगों में जाएगा ही नहीं। लेकिन जब तक वो रुचि प्राप्त नहीं है तब तक हमको ईमानदारी से भगवान की प्रैक्टिकल सेवा करनी चाहिए, और उसके बाद भी भगवान की सेवा हमें दिखाई पड़ेगी कि किस प्रकार से भगवान की सेवा है। अब भगवान इसमें कर्मयोग के बारे में बताएंगे तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।